Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान में आप सभी का एक बार पुनः। कैसे हैं आप सभी? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि लगातार समाधान परिवार आपको दुआएं और शुभकामनाएं दे रहा है, आपके लिए योग कर रहा है कि हमारा ये परिवार, न केवल हमारा समाधान परिवार बल्कि समूचा विश्व परिवार सुखी हो, संपन्न हो, शांत हो और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो। हम लोग पहले भी कहा करते थे, आपको याद होगा, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेके कच्छ तक कोई भी दुखी ना हो, अशांत ना हो, और ना केवल भारतवर्ष में बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक या उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक किसी के पास कोई भी समस्या ना रह जाए, क्योंकि पूरा ही विश्व एक परिवार है और परिवार में यदि कोई सदस्य दुखी होता है, अशांत होता है, समस्या से ग्रस्त होता है तो परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेवारी होती है कि उसकी तकलीफ को दूर करे। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ है तो वो पूरे शरीर की तकलीफ होती है, केवल उस अंग की तकलीफ नहीं होती। ऐसी ही एक विशाल भावना, एक विराट भावना अब पैदा होता चला जा रहा है और इसी की वास्तव में आवश्यकता है। हम सब योग भी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, उसके भी सुंदर वाइब्रेशन सभी को मिल रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सब सिंसियरली ये कर रहे हैं, परिवार के रूप से ये कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। ये सब जारी रखिएगा। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। दादा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक्स
दादा जी। एक जो विशाल भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, ये भारतवर्ष से निकली हुई भावना, बड़ा अच्छा लगता है कि सब हमारे हैं, सभी निश्चिंत हों, सुखी हों, शांत हों, क्या कहेंगे इसे?
भावनाएं बहुत बड़ी चीज हैं। मनुष्य की भावनाएं उसके सुखों का कारण है या उसके दुखों का कारण है, ये सोचने से कि सब हमारे हैं, मन में सुखद फीलिंग होती है, और ये सोचने से ये कैसा है, जो उसकी असली चीज है, जो मूल स्वरूप है, जो उसका आंतरिक सुख है, वो जैसे छिन्न भिन्न होने लगता है। तो हम अपनी भावनाओं को बहुत पॉजिटिव करें और इसका भी प्रवाह संसार में दूर दूर तक फैलता है, क्योंकि जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसे ही हमसे चारों ओर वाइब्रेशंस भी निकलते हैं।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, यही जो भावनाएं हैं इन्हें हमेशा कैसे पॉजिटिव रखें? जब एक विश्व के स्तर पे देखते हैं कई बार ये सहज हो जाता है, लगता है कि हाँ सारे विश्व में शांति हो, सुख हो, सभी आनंदित हो, लेकिन जब अपने कभी आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे लगातार हमारा व्यावहारिक नाता है, रिश्ता है, और वहाँ कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ होता है, तो वहाँ भावनाएं थोड़ी खराब हो जाती हैं।
ये जो सुंदर भावनाएं हैं, सचमुच इनको करने की जरूरत तो है ही, लेकिन इसकी विधि बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वरीय मार्ग पर आने पर हम सभी ने इसकी एक सुंदर विधि जानी, और वो इस रूप से जानी कि जितना जितना हम अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करेंगे तो हमारी दृष्टि दूसरों के लिए अच्छी हो जाएगी। एक उदाहरण छोटा सा, माँ बाप, उसके मान लो 5 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। अब देखिए माँ बाप की सब बच्चों के लिए कैसी भावनाएं रहती हैं। एक एक बहुत अच्छा पढ़ लिख ले, बिजनेस है तो एक एक अच्छा अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, हम इनकी ऐसे शादी कराएंगे, एक एक को ऐसा घर बना के देंगे, एक एक की ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें खोलेंगे, हम फैक्ट्री हैं तो हम हर एक को अलग अलग फैक्ट्री बना देंगे। कैसी अच्छी भावनाएं माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप बड़े हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो उनके रक्षक हैं, गार्जियन हैं। इसी तरह जब तक मनुष्य में स्वार्थ है तो उसकी भावनाएं छोटी हैं, कहीं उसकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही तो उसके मन में घृणा नफरत हो रही है, कहीं उसकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है तो उसके मन में प्रेम भाव जाग रहा है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होते हैं, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ और ये सब जिनको हम देखते हैं ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, तो भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। जो हैं ही देव कुल की महान आत्माएं, उनके लिए भावना गलत क्यों? ये वही तो हैं जिनकी आज तक मंदिरों में हम पूजा करते आ रहे हैं। ये श्रेष्ठ भावनाओं को पैदा करने का तरीका, जब हम अपने को एक ऊंचे स्वमान में ले चलते हैं, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वयं भगवान जो विश्व कल्याणकारी है मैं उसकी संतान हूँ। तो जो काम बाप का और बच्चों का भी होता है, लौकिक में भी ऐसे ही चलता है
जी।
तो उसने विश्व कल्याण का ये कार्य हमें भी सौंपा है, तो हमें तो सब का कल्याण करना, ये सब हमारे अपने हैं, तो भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। ऐसे तीसरा बहुत अच्छा हमारा स्वमान है, पूर्वज हैं हम बड़े हैं, तो बड़ों को हमेशा छोटों की ओर स्वीट नजर रखनी होती है, देने की भावना रखनी होती है। तो जैसे जैसे हम इस गुड फीलिंग में आते हैं, मैं पूर्वज हूँ, तो देने की भावना बढ़ने लगती है। दूसरों की छोटी बातें हमें टच नहीं करती फिर, क्योंकि हम हो गए बड़े और वो हैं छोटे। जैसे छोटे बच्चे कुछ गलती करते रहे तो बड़े उसको ज्यादा माइंड नहीं करते, छोटे बच्चे हैं, ठीक है धमका दिया, थोड़ा कुछ कह दिया, लेकिन हैं तो छोटे बच्चे। तो ठीक ऐसे ही हम पूर्वज बड़े, तो दूसरों की छोटी बातें हमारी भावनाओं को चेंज नहीं करती, पर हम तो बड़े हैं तो हमें तो सबको अच्छी भावनाओं का दान देना है। और ये गुड फीलिंग रहती है अपने अंदर कि हमारी अच्छी भावनाएं भी इन्हें सुख देंगी। हमारी अच्छी भावनाएं, जिसको दूसरा शब्द यूज करें, दुआएं बन जाती हैं। ये हमारी दुआएं इनको सफलता की ओर ले चलेंगी, ये हमारी दुआएं इनके मार्ग के जो बाधाएं हैं, रोड़े हैं, उनको हटा देंगी, हमारी दुआएं इनको सफल करेंगी हर फील्ड में। तो ये तरीके हैं भावनाओं को सुंदर बनाने के।
बिल्कुल, मतलब ब्रदर जी, अपने स्तर पर अपने आप को बहुत ऊंची स्मृति दिलाने की आवश्यकता है, ऊंची स्थिति बनाने की आवश्यकता है, और वो हम सबको करना चाहिए। कई बार ब्रदर जी लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें करना होगा, सोचने से ही क्या हो जाएगा। चलिए, भावना के स्तर पर एक आध्यात्मिक लोग इस बात को समझ सकते हैं, तो इस बात को कैसे समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है?
मान लो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, देखिए उसकी भावनाएं संसार तक पहुंचेंगी। मान लो उसके मन में भावनाएं हैं कि मुझे सबके लिए कुछ कल्याणकारी काम करने हैं जिसमें सबको सुख मिले, कि मुझे ये काम अच्छा देश के लिए करना है, तो भावनाएं कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगी ना। पहले तो मनुष्य के मन में एक विचार ही उठता है ना, कर्म में उसका मूर्त रूप मनुष्य बाद में देता है। तो वास्तव में मन की श्रेष्ठ भावनाओं से अच्छे वाइब्रेशंस भी फैलते हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान पे चल रहे हैं उन्हें जानना चाहिए, भगवान के महावाक्य हैं कि तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करेगी। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन संकल्प ही पहले आता है, कर्म बाद में होते हैं। अगर भावना श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ होंगे ही। परिवार को संभालना भी कितना कठिन काम हो जाता है। देश जो एकदम गिरावट की ओर चला गया था, हर चीज बिगड़ चुकी थी, उसको सुधारना एक दो दिन में नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर उस मनुष्य की भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हैं, निस्वार्थ हैं और दूसरों को ही देने की भावना है, तो व्यक्ति अपने प्रयोजन में सफल अवश्य होगा, ये निश्चित है।
मतलब भले देर लगे लेकिन अच्छे दिन आएंगे
जरूर।
बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद रखते हैं भ्राता जी। कई लोग थोड़े से उतावले हो जाते हैं कि अच्छे दिन हैं कहाँ, वो वायदा किया गया था अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से यदि बीमारी बहुत क्रॉनिक हो, सुधार करने में, ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ब्रता जी, कुछ हमारे पास मेल आए हुए हैं। ये पहला मेल ब्रता जी हमें मारिया ने मलेशिया से भेजा है, और ये कहती हैं, आई एम अ बीके सिंस अप्रैल 2003। दीज डेज आई एम फेसिंग वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, एन इविल स्पिरिट इज गिविंग मी ट्रबल विच कम्स एंड सिट्स ऑन नेक, स्पेशली बिफोर आई स्लीप एंड ऑल्सो डे टाइम। आई फील स्लीपी एंड कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ आई डू 2 hours योगा, इट विल ट्रबल मी 2 days। सो मेनी मैथड्स आई डिड, but it is too powerful for anybody. Please guide me what to do. ये मरिया जी मलेशिया से इन्होंने ये लिखा है।
ये जो बॉडीलेस सोल्स की समस्याएं हैं,
विदेश में भी ये होती हैं,
बहुत बढ़ती जा रही।
मैंने सोचा था भारत में,
मलेशिया के पास तो बाली टापू है, वहाँ तो बस बुरा ही हाल है लोगों का। जैसे भारत का कलकत्ता प्रसिद्ध था ना, बंगाल का जादू
के,
बंगाल का, वैसे ही बाली का जादू भी वहाँ बहुत ही खतरनाक रूप से प्रसिद्ध है। इसलिए ये तो जहाँ तहाँ चल रहा है, विदेशों से भी हमको फोन आते हैं, भले ही जो दूसरे ढंग के लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं या कुछ वैज्ञानिक है, इन चीजों को मानते नहीं है, पर एक्चुअली जब ये चीज सामने आने लगती है तो उस चीज को चाहे तर्क न दिए जा रहे हों उनके लिए, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ता है। और ऐसे केसेज हमारे पास भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। और मैं हमेशा एक छोटी सी राय इन सबको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ फील होने लगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 7 बार करो। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ। बच्चा 1-7 साल का, उसकी दादी ने मुझे फोन किया कि हमारा बच्चा रात को डरता है और कहता है मेरे पास भूत आते हैं। अभी पहले तो लोग ऐसे ही मजाक करने लगे, भाई बच्चे को कुछ भी दिखता होगा, भूत कह दिया, उसे क्या पता भूत क्या होते हैं। लेकिन जब वो ज्यादा डरने लगा तो उसकी दादी ने मुझे फोन किया। मैंने उसे कहा, बच्चे से बात कराई, मैंने कहा तुम ऐसा करना, तुम जानते हो ना शिव बाबा के बच्चे हो। कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, मैंने रिपीट करा दिया
अपने बच्चे को।
हाँ, बच्चे को पक्का करा दिया, 2-4 बार बुलवाया, उसको बताया कि तुम सोने से पहले 7 बार करना। बस उसने शुरू किया और पहले दिन से भूत आने बंद हो गए। और फिर वो बच्चे को लाई थी उसकी दादी, मेरे से मिलाया और बच्चे ने खुद बताया अब क्या होता है कभी कभी कि भूत मेरे कमरे में आ रहा है, मुझे रात को दिखता है। और मैं उसे कहता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और भूत भाग जाता है, भाग जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं,
ये तो हनुमान चालीसा जैसा हो गया।
ये चीजें बॉडीलेस है ना, ये आत्माएं तो हमारे हर वाइब्रेशंस को देख सकती हैं, फील कर सकती हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। तो ये इसका सबसे सुंदर समाधान है। ये जब भी योग में बैठें तो 7 बार ये याद करके बैठें। ये वैसे भी अपने चारों ओर एक ओरा क्रिएट कर लें रोज सवेरे। सिंपल सी ये विधि है, प्रभा मंडल इसे कहते हैं, जो हमारे चारों ओर एक शक्तियों का घेरा बन जाएगा। ये 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, चारों ओर एक पावरफुल ओरा बन गया है। बस इस ओरा में कोई भी ऐसी भटकती आत्मा आएगी नहीं और इनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर उस बात पे नहीं ज्यादा जाना चाहता, विश्वास करें या ना करें। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कल्पनाएं हैं। देखो सच बताऊं तो हम भी ऐसा ही मानते थे, जब हमारी ये समाज में हुआ वहां इन चीजों की कोई मान्यता नहीं थी, पहले से ही था। लेकिन जब बहुत केस आने लगे, लोगों की ये समस्याएं आने लगी, प्रैक्टिकल देखने लगे कि बीमारी छोटी सी है, बुखार है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, घर में कुछ और चीजें हो रही हैं, बर्तन इधर से उधर उड़ के जा रहे हैं, तो ये कुछ कल्पना तो नहीं हो सकती। तो सोचना पड़ा कि कुछ तो है। और फिर जब हमने उनको ये ऐसे ऐसे उपाय कराए मास्टर सर्वशक्तिवान के, तो वो चीजें ठीक होने लगी।
मैं भी एक दिन गया छत पे, अब मुझे लगा कि मैं भी सोऊं बाहर अच्छी ठंडी हवा में। अब उस दिन कोई भी बाहर नहीं सोया हुआ था, अब मैं जाके सोया। अब जैसे ही मुझे नींद आने को थी, तभी मुझे बहुत भारीपन महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं बोलना भी चाहता था, चिल्लाना भी चाहता था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। तो उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया कि वो चीज़ है क्या। थोड़े समय के बाद जब थोड़ा हल्कापन आया, तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और मैं भाग के कमरे में चला गया। तो ये साइंस इसे कैसे सिद्ध करेगा, या होना होता तो हमेशा होता, नहीं हो रहा है तो
नहीं, हमेशा तो होगा ही।
कैसे समझी जाए?
देखिए कुछ ये चीजें सूक्ष्म हैं और साइंस की अप्रोच से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि आत्मा साइंस का विषय नहीं है, वो फिजिक्स है। तो फिजिकल चीजें ही उसका विषय, भौतिक है, भौतिक जो प्रकृति है यही उसके विषय हैं। लेकिन ये हैं जरूर, ये बात तो माननी पड़ेगी। कोई इसको जानता है, कोई इसको नहीं जानता। घर घर में इसकी आपदाएं होती रहती हैं। आजकल ये प्रकोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए सब व्यक्तियों को पवित्र बनना ही पड़ेगा
जिनको इस प्रकार की तकलीफ है। तो ये कितने दिनों तक इस अभ्यास को ये
करना? नहीं, ये अभ्यास तो एक अपनी ऐसी चीज है, रोज हमें ओरा क्रिएट करना, रोज इसको मेडिटेशन करना, उसके साथ इसको जोड़ दे, इसको अपने नेचर बना दे, क्योंकि इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जगती जाएंगी।
प्रथा जी, एक दूसरा मेल हमारे पास आया है प्रेरणा जी का, नागपुर से। ये कहती है कि रिस्पेक्टेड सूरज भाई, आई हैव वन बेबी ऑफ 5 ईयर ओल्ड, सी हैव वन हैबिट ऑफ थंब, शी ऑलवेज कीप हर थंब इन हर माउथ, सो प्लीज टेल मी हाउ टू डू मेडिटेशन फॉर हर।
ये तो
ये बच्चे कितने समय तक अपना अंगूठा रखते हैं।
बच्चे तो अंगूठा चूसने में उनको रस मिलता है, एक जिसको एंजॉय करते हैं, एक बार मिल गया वो रस तो फिर वो लगातार चलता रहता है। लेकिन उसकी आदत को छुड़ाने के लिए इन्हें फिजिकली कुछ करना पड़ेगा
जी।
हाँ, जैसे उसके अंगूठे को बांध दिया जाए, कुछ कपड़ा आदि बांध देते हैं ताकि वो उसको मुंह में न ले सके। अगर इनको करना ही है, केवल एक अभ्यास करेंगे कि उसे आत्मा देखकर दृष्टि डालेंगे, उस पर दृष्टि देंगे और खुद संकल्प करेगी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये बच्चा इस आदत से मुक्त हो जाए। बाकी फिजिकली कुछ कर लेना चाहिए, यहाँ बांध देते हैं कुछ ना कुछ है, तो फिर बच्चा उस आदत को, ये आदत ही तो है ना।
तो नॉर्मली कब तक समझें कि ठीक है इस समय तक वो अंगूठा मुंह में ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस साल के बाद नहीं लेना
चाहिए? वो तो जैसे उसको स्कूल भेज दिया जाएगा फिर तो उसकी वो सब आदत छूट जाएगी। तो ये चीजें ज्यादा लंबा समय नहीं चलती है, एक आध साल ही चलती है
जी। मतलब कुछ और उसका जो अल्टरनेट है वो उनको दे दिया जाए,
बस वही, जैसे उनका ध्यान डाइवर्ट होगा ना किसी और तरफ तो वो चीज छूट जाएगी
जी। भ्राता जी, ये तीसरा मेल हमारे पास आया हुआ है। ये कहते हैं कि भ्राता जी, आप हमेशा कहते हैं कि मन में अनंत शक्तियां होती हैं। मेरी उम्र अब 25 साल की हो गई है, लेकिन लंबे समय से मेरी इच्छा है कि मैं अपनी हाइट बढ़ाऊं, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि केवल 20 साल तक ही हाइट बढ़ाई जा सकती है। तो क्या राजयोग के अभ्यास से और ये मन की शक्ति का प्रयोग करके मैं अपनी जो हाइट है उसे बढ़ा सकता हूँ? और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं गंजा भी होने लगा हूँ, तो क्या बालों के लिए भी कुछ किया जा सकता है? ये दो ज्वलंत समस्याएं हैं। वैसे हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सचमुच
इनको आत्मा की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। आत्मा का जो लेवल है, आत्मा की जो स्थिति है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने पर ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल चीजें हैं और अगर 25 साल की आयु में इनके बाल इतने गिरने लगे हैं तो जरूर शरीर में कोई विशेष कमजोरी है जो इनकी हाइट भी नहीं बढ़ने दे रही है और बालों को भी स्ट्रोंग नहीं होने दे रही। हालांकि आजकल बालों को मजबूत करने के बहुत सारे ऐड आते रहते हैं
जी।
फिर भी राजयोग ये करके देखें और अपनी एक विजन बना लें, अपने सामने एक विजन बना लेंगे, मेरी लंबाई एक साल में इतनी हो जाएगी। लेकिन वो 2-4 फुट नहीं बढ़ा देंगे एक साथ, जितनी इनको चाहिए, मुश्किल से 4-6 इंच वो आगे बढ़े। और उसके लिए 1 घंटा रोज मेडिटेशन भी कर लें, 3 मास तक ये अवश्य करें मेडिटेशन। विजन बनाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्वमान के साथ योग अभ्यास करें और पानी चार्ज करके रोज पिएं। बाकी ये क्योंकि फिजिकल चीज है, जितना ये विश्वास रखेंगे इन्हें थोड़ी बहुत सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन इन्हें लंबाई के बारे में सोचकर अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लाना चाहिए। जो बहुत लंबे होते हैं वो भी कहाँ अच्छे लगते हैं, और कोई बहुत छोटे कद के हैं और बड़े महान बन जाते हैं, बड़े पावरफुल कार्य करते हैं। इसलिए अपने मन की जो कॉन्शियसनेस है उससे इसको निकाल देना चाहिए। नो डाउट मन की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है ही, लेकिन अब हर चीज में वो कितना काम करेगी ये डिपेंड करेगा कि इसके मन में दृढ़ता कितनी है और ये उसको कितना सिंसियरली और रेगुलरली जो बातें हमने कही उसको यूज करते हैं। तीसरी चीज वही, इनको अपने ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए। तो वही 4 चीजें जो हम बीमारियों के लिए बताते हैं, रात को सोते समय विजन बनाना, पानी चार्ज करके पीना, ब्रेन को एनर्जी देना और 1 घंटा पावरफुल योग करना, साथ साथ अपने अंदर बहुत विश्वास, एक साल में ये इतनी ऊंचाई मेरी बढ़ जाएगी तो जरूर इनको गुड रिजल्ट मिलेगा।
तो मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत सिंसियर होते हैं।
हाँ,
कि नहीं पढ़ाना, बिल्कुल करना ही है, ये इनके इन प्रकार जहाँ से भी युक्ति मिल जाए।
हाँ,
तो मुझे लगता है इसमें फोकस तो रहेंगे। खास करके और जो बालों की बात है भ्राता जी, सचमुच आजकल समस्याएं बहुत बढ़ रही है, बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, और खास करके इस उम्र में जबकि बिल्कुल यंग हैं, और अभी यदि उनकी शादी ना हुई हो तो और ज्यादा उनको लग रहा होगा कि अभी तो मैं यंग हूँ और बाल क्यों झड़ रहे हैं। क्या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सके?
देखिए, ब्रेन को एनर्जी देना इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है
जी।
क्योंकि सब कुछ तो ब्रेन से ही है और बाकी बढ़ ही रहा है, ये बहुत सारा बहनों में बढ़ गया है। ये अभी हार्मोन्स की कुछ गड़बड़ है या क्या है ये तो डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रयोग करते रहना चाहिए और सफलता तो किसी न किसी सीमा तक मिलती है।
राधा जी, हमारे पास अगला मेल आया है अमृतसर से। ये कहती हैं कि मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। मेरा क्वेश्चन सूरज भाई जी से ये है कि मेरा फेस बिल्कुल ठीक नहीं रहता, यहाँ तक कि मैंने 7 महीने तक MD डॉक्टर्स और आयुर्वेद से भी मेडिसिन ली है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स रहते हैं, सारे साल ही यही हाल रहता है। क्या आप राजयोग द्वारा मेरे पिंपल्स को सही करने का कोई समाधान बता सकते हैं? ये बिन्नी जी हैं जिन्होंने अमृतसर से हमें ये भेजा है, और खास करके लड़कियों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है बेटा जी कि चेहरे पे यदि दाग हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, तो उन्हें लगता है कि अब कैसे घर से बाहर निकलना, या फिर उनकी कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं ना कहीं एक अंतर जरूर आ जाता है।
वही चीजें ये भी यूज करेंगी राज्यों की, दोनों हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, दोनों हाथ अपने फेस पे रखें या घुमा लें, धीरे धीरे एनर्जी देंगे और संकल्प करेंगे जो दाग धब्बे ये सब समाप्त हो जाएं, ऐसा करना है। पानी चार्ज करें या जो भी फेस वॉश ये यूज करती हैं या कोई भी चीज जो ये लगाती हो उसको ये चार्ज कर लें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ इस वमान से फिर लगाएं या फिर धोएं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। क्योंकि ये सब चीज भी ब्रेन से ही कंट्रोल है, वही 10 मिनट अभ्यास करके मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं, 3 बार अभ्यास करके अपने दोनों हाथ दाएं बाएं ब्रेन पे रखेंगे, ऐसा 1 मिनट रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, फील करेंगे मेरा ब्रेन इससे परफेक्ट हो रहा है, ऐसा 10 बार, और यही एनर्जी अपने फेस पर भी देगी। तो निश्चित रूप से क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है तो ये सब चीज ठीक हो जाएगी। और साथ में ऐसा भी अभ्यास ये करें, जब योग अभ्यास करें, कि पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा को आ रही हैं और मुझसे फैल रही हैं पूरे फेस में, जैसे सफेद किरणें पूरे फेस में अंदर अंदर और ब्रेन में भरती जा रही, फैलती जा रही और वो सब कुछ क्लीन कर रही हैं, डिसेंट बना रही हैं, जैसा संकल्प भी करें। तो ऐसे प्रयोग करने से कुछ दिन बहुत अच्छी तरह 3 मास का लक्ष्य बना लें, कॉन्फिडेंटली करें, रेगुलरली करें, तो गुड रिजल्ट जरूर मिलेगा।
व्रत जी, हम लोग पहले भी शायद बात कर चुके हैं, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ज्यादातर ये हो जाता है? तो हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड हो ताकि ऐसा कोई जो इफेक्ट देखने में आता है जो हम नहीं चाहते हैं वो ना हो, तो क्या राजयोग के द्वारा ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसे भी कुछ ठीक किया जा सकता है?
परमात्मा की शक्तियां लेकर उसको पूरी देह में फैलाना एक तो ये उसका बहुत अच्छा तरीका है, दूसरा पानी को चार्ज करके पीना, एक आधा घंटा रोज इस शरीर के लिए योग अभ्यास करेंगे, 2 स्वमान के साथ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और इस देह प्रकृति की मालिक हूँ, तो कुछ योग बल से, कुछ चार्ज पानी से, और परमात्मा की जो किरणें हम लेके पूरे शरीर में फैलाएंगे उससे ये हार्मोन्स पुनः संतुलित हो जाते हैं, हुए हैं बहुतों के, हमने भी इसके एक्सपेरिमेंट कराए हैं, क्योंकि कई कन्याओं को और कई लड़कों युवकों को भी इसमें कई समस्याएं होती रहती हैं, तो ये सब प्रयोग कराने से बहुत लोग ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, उम्मीद रखते हैं कि ये सब भी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, समस्याएं तो कई प्रकार की हैं, चाहे इन्होंने रखा था कि अब चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स होने लगे हैं, यद्यपि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की भी बात हो सकती है, या किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, या सिर के बाल झड़ने लगे हैं, या फिर एक ही विल स्पिरिट की भी बात जिसकी आज हम लोगों ने चर्चा की है, अलग अलग प्रकार की ये समस्याएं हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि राजयोग का यदि अभ्यास हम करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात है वो भी संतुलित होती चली जाती हैं, या हम जिस प्रकार की इच्छा या कामना रखते हुए जो हमारे हित में है, कल्याण में है, उसमें राजयोग अवश्य हमें मदद करता है। तो आप राजयोग का गहन अभ्यास करें, और जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी कि सबका कल्याण हो, तो एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारी संस्कृति में शामिल है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। इसी श्लोक को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी भावनाओं को भी ऐसी सुंदर बनाएं। तो जब हम दूसरों के लिए ऐसी सुंदर भावनाएं रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी दूर होती चली जाएंगी।